From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world, wherever you may be. We are deeply grateful for the technology which allows us to meet together once again. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session, which is originating from the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah. We acknowledge members of the First Presidency and Quorum of the 12 Apostles who are seated on the rostrum this morning. The music for this session will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. The selections have been previously recorded and will be under the direction of various conductors and organists. The choir opened this meeting with Truth Eternal and will now favor us with Praise to the Lord, the Almighty. The invocation will then be offered by Elder Patrick Kieran, Senior President of the 70. After which the choir will sing, I Feel My Savior's Love.
Oh, my soul, praise you, Lord. Our dear Father in heaven, we gratefully gather at the opening of this worldwide conference to rejoice in the life, ministry, and atoning gift of our Savior, Jesus Christ. We pray for all of those who are unwell in body, mind, or spirit, and for those who grieve. We ask thee to bless any in need who are watching or listening to this conference, particularly those who feel marginalized or lost. We plead for healing, peace, and comfort to settle upon them. We seek thy blessing upon all those who are sick or suffering as a result of the COVID virus and for those working to defeat it. We ask for guidance for leaders of nations and peoples around the world as we yearn for a return to grace, dignity, and civility in public life. We pray for all of those who will speak during this conference. We humbly acknowledge that the gospel of Jesus Christ, joyfully lived, is the answer to all ills, and offer this prayer with thanksgiving in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Save.
it will now be our privilege to hear from our beloved Prophet President Russell M. Nelson. He will be followed by Elder David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles and Elder Scott D. Whiting of the 70, Sister Michelle D. Craig, First Counselor in the Young Women General Presidency, will then address us.
My dear brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, हम आभारी हैं आपके साथ 190th ईसा मसीह के गिरजा घर अंतिम दिनों के संतों के इस सम्मेलन में होने के लिए. मैं आपके साथ आपका घरों में यहाँ जहाँ कहीं भी हो आपको प्रॉफिट देवदूत और प्रकट करने वाले और चर्च के अन्य नेताओं के संदेशों को के साथ सुनना पसंद है. हम उस टेक्नोलॉजी के लिए कितने आभारी हैं जो हमें यीशु मसीह के शिष्यों के दुनिया भर के महान सभा के रूप में जुड़ने के अनुमति देती है. पिछले अप्रैल के महासम्मेलन चल को पहले से अधिक लोगों द्वारा देखा गया था. पिछले कुछ महीनों के दौरान एक ग्लोबल पेंडेमिक पाया जो बहुत से शक्तिशाली रूप के चलती रही और अन्य प्राकृतिक दुर्घटना ने हमारी दुनिया को उल्टा कर दिया है. मैं आप में से प्रत्येक के साथ शोक करता हूं जिसने इस दौरान किसी प्रियजन को खो दिया है. फिर भी प्रभु के कार्य लगातार आगे बढ़ता रहा है. अन्य लोगों से शारीरिक और बने रहने फेस मास्क और जूम मीटिंग्स के बीच हमें कुछ चीजों को अलग अलग तरीके से करना सीखा है और कुछ को अधिक प्रभावी ढंग से. असामान्य समय असामान्य प्रतियोगिता के ला सकता है. हमारे मिशनरियों और मिशन के नेताओं सनातन लालिचा और वास्तव में उल्लेखीय है. यद्यपि अधिकांश मिशनरीज को अपना कार्य करने के लिए नहीं राजनातक मकतरिक खोजने पड़े हैं. कई मिशन ने पहले की तुलना में अधिक शिक्षण करने की सूचना दिया है. हमें कुछ समय के लिए टेंपल को बंद करना पड़ा और कुछ निर्माण परियोजनों में थोड़ी देरी हुई, लेकिन जब वे सभी आगे बढ़ रहे हैं, कैलेंडर वर्ष 2020 में हमने 20 नई टेंपल के लिए जमीन थोड़ी होगी. पारिवारिक इतिहास का काम तेज से बढ़ा है. कई नए वार्ड और स्टेक बनाए गए हैं और हमें विवरण करने के लिए आभारी है कि चर्च ने 149 देशों में 882 प्रयोजनों के लिए पेंडेमिक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रदान किया है. कई घरों में बढ़ती समाचार से अध्ययन से और भी मजबूत गवाही हुई है और पारिवारिक रास्ते हैं. एक माँ ने लिखा, अब हम अपने बच्चों और पोते के बहुत करीब महसूस करते हैं कि हम हर रविवार को जूम पर इकट्ठा होते हैं. प्रत्येक ने कंपोलों में पर अपने विचार दे. हमारे प्रभु परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना बदल गई है क्योंकि हम बेहतर समझते हैं कि उन्हें क्या चाहिए. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए इस अद्वितीय समय को उपयोग कर रहे हैं. हम परीक्षण करने के लिए पृथ्वी पर यहाँ है या देखने के लिए हम नियमित रूप से पश्चाताप करने सीखने और प्रगति करने के लिए यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे. हमारे आत्मा आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और हम उस वचन मार्ग और मजबूत से रह कर करते हैं. इसके माध्यम से हमारे स्वर्ग के पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह हमको प्यार करता है. वे हमारी परवाह करते हैं. वे और उनकी पवित्र स्वर्गदूत हमारे देखभाल कर रहे हैं. मैं जानता हूँ ये सच है. जैसे कि हम उन शब्दों को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं जिन्हें प्रभु ने अपने सेवकों को वर्तित करने के लिए प्रेरित किया है, मैं आपका प्रभु को दिए गए एक वचन को विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी परमेश्वर की उस वाणी की सहारा लेगा जो सदगामी और शक्तिपूर्ण है जो शैतान की सभी चलाकियों जालन और कपटियों को चूर चूर करे मसीह के को सीधे करते रास्ते को चला। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर के शब्द को चुने का पालन करेंगे, जैसे कि महासम्मेलन के दौरान घोषित किया जाता है। मैं वादा करता हूँ कि जैसे आप ऐसा करेंगे, आपकी गवाही मजबूत होगी और हम एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं आपको प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। उसके ईश्वर प्रेम के बाहों में गिरा हुआ महसूस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।
I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us.
पहले मैं एक यूनिवर्सिटी शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था। एक शिक्षक के हमारी जिम्मेवारी रहा स्टूडेंट्स की मदद करो, कैसे अपने आप से सीखना चाहिए। और हमारा काम रहा, एक जरूरी मकसद रहा, परीक्षा में स्टूडेंट्स ने कैसा किया पर फीडबैक तैयार, ग्रेड और उपलब्ध करना। जैसा कि आप पहले से निजी अनुभव से जानते होंगे, स्टूडेंट्स आमतौर पर सीखने के कार्य में परीक्षाओं को उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बीच बीच में परीक्षाओं का होना सीखने में उतना ही महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी परीक्षा हम लोग की मदद करे है कि एक खास सब्जेक्ट के बारे में तुलना करे में हम लोग के कौन चीज जाने की जरूरत है, कि हम लोग असल में कौन चीज जानता है, से उससे हम लोग के एक स्तर मिले है जिसके जरिए हम लोग सकता अपन सीख और बढ़ती की इवेलुएट करें। वही रकम मरणशीलता के पाठशाला में जो परीक्षाओं होती है वो हमारे आनंद प्रगति में बहुत जरूरी भाग है। तो भी दिलचस्पी से ये शब्द परीक्षा एक भी दफा शास्त्रों के अंग्रेजी स्टैंडर्ड वर्क्स में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये शब्द जैसे परखना, जांच करना और आजमाना इस्तेमाल करा गए हैं हम लोग के धार्मिक ज्ञान के बारे में कई पहलुओं के सही तरह दिखावे में समझे में और हम लोग के स्वर्ग के पिता के खुशहाली के आनंद योजना के प्रति भक्ति करे में और हम कैसे रक्षक के प्रायश्चित के आशीर्वाद ढूंढने में कौन सी क्षमता रखता। उसने जो उधार की योजना के अधिकार दिया था ने हमारे मरणशील जीवन का इसलिए असली मकसद बतलाया था। पुराने और नए शास्त्र में ये शब्द प्रूव, एग्जामिन और ट्राई इस्तेमाल करके और इसके सहारे हम उनको परखेंगे, ये या देखने कई कि क्या वे वह सब करेंगे जो उनके प्रभु उन्हें करने की आज्ञा दिया है। साल्मिस्ट डेविड के ये निवेदन पे गौर करो, हे प्रभु मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को आजमाना, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। और प्रभु 1833 में घोषणा करी, इसलिए अपने दुश्मनों से मत डरो क्योंकि मैं अपने दिल में फैसला लिया है। प्रभु ने कहा कि मैं तुमको सब चीजों में परखूंगा, क्या तुम मेरे वचन को मानते हो, प्राण देने तक भी कि तुम विश्वासी पाए जाओगे। इस साल 2020 के मार्क करा गए हैं एक तरह से, एक ग्लोबल पेंडेमिक विश्व भर की महामारी से जिसने हम लोगों को कई तरीकों से परखा, जांच किया और आजमाया है। हम विनती करता है कि हम अकेले और परिवार सहित वो अनमोल सीख पा रहे हैं जो सिर्फ चुनौतीपूर्ण अनुभवों से हम सीख सकेंगे। हम ये भी आशा करता है कि हम सब सर्वपूर्ण रूप से परमेश्वर की महानता के कबूलेंगे और ये सच्चाई कि वो हमारे कष्टों को हमारे लाभ के लिए पवित्र करेगा। द्विवैश्विक आदर्श सके हम लोग के राह देखने और मजबूत करेंगे जब हम लोग अपनी जिंदगी में परखने और आजमाने वाले परिस्थिति से गुजरे हैं, चाहे वो जो भी हो, तैयार रहने का आदर्श और मसीह में दृढ़ता से आगे बढ़ने का आदर्श। रक्षक के चेलों होने के नाते हम लोग की आज्ञा देवा गए हैं, सब रकम से जरूरी के सामान तैयार करो और एक घर स्थापित करो, एक रकम के प्रार्थना के घर, उपवास के घर, विश्वास के घर, सीखने का घर, महिमा के घर, वैश्वता के घर, परमेश्वर के घर। हम लोग के यही भी वादा करा गए हैं कि अगर आप तैयार रहेंगे आपको डर नहीं लगेगा और ये कि आप दुश्मन के ताकत से छुटकारा पा सको और मेरे पास आओ धार्मिक लोग बन के बिना कलंक के और निर्दोष रहो। ये शास्त्र एक सही तरीका प्रदान करे है हम लोग के जिंदगी और घरों के आयोजित और तैयार करे के दोनों शास्त्रिक और धार्मिक रूप से हम लोग की कोशिश तैयारी करे के मरणशीलता में परखे जाए के लिए चाहे रक्षक के उदाहरण से अपनाओ जो थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमानी और ताकत में बांधिस और परमेश्वर और इंसान उसे खुशी रहा। एक मिश्रित संतुलन दिमागी, शारीरिक, धार्मिक और सामाजिक तैयारी का कुछ महीने पहले एक शाम को सुसन और हम अपन खाना के स्टोरेज और इमरजेंसी सामान के जांच करे गया। उस समय पे कोविड-19 काफी जोर से फैल रहा था और कुछ भूकंपों ने यूटा में हमारे घर को भी हिलाया था। हम लोग अपन शादी के शुरुआत के दिनों से प्रॉफिट के सलाम आना है अनजाने चुनौतियों के लिए तैयारी करने के लिए, इसलिए जांचना कि हम लोग कितना तैयार है वायरस और भूकंपों के आक्रमण के समय एक अच्छा और सही काम लगा था। हम लोग मांगता रहा जाने ई बिन बताए परीक्षाओं के हमारे ग्रेड कितने होंगे। हमने बहुत कुछ सीखा कई चीजों में, हमारे तैयारी का काम एकदम सही रहा, मगर कुछ अन्य चीजों में सुधार जरूरी रहा। कहे कि हम लोग सही तरीके से खास जरूरतों के पहचाना और पता नहीं लगा रहा। हम लोग बहुत हंसा भी, जैसे कि हम लोग देखा कि एक पीछे वाला कबर्ड में खाना देर से साल से रखा रहा। सच बोले तो हम लोग एक डर लगा रहा कुछ कंटेनर्स के खोलो इधर से कि कोई और ग्लोबल पेंडेमिक नहीं खुल जाओ। लेकिन आपसे चाहिए खुश रहो कि इस जान के कि हम लोग खतरनाक सामान से के सही रकम से फेंक दिया और कि दुनिया के कोई रकम के स्वास्थ्य के खतरा दूर हो गए हैं। कुछ गिरजाघर के सदस्य ये रहे कि इमरजेंसी योजनाएं और सामान खाना के स्टोरेज और 24 आवर किट अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रदर ने अभी हाल में और बहुत ज्यादा बतलाया नहीं है इस और इसी संबंधित मामलों पे महान सम्मेलन में। लेकिन बार बार तैयारी के बारे में घोषणा करा गया है गिरजाघर के लीडरों द्वारा देर सालों से। कितनी दफा प्रोफेट लोग सलाह दी से पहले से भी एक शक्तिशाली सलाह बनता है और एक चेतावनी की आवाज को जो सोलो परफॉर्मेंस कभी नहीं प्रदान कर सकता। जो रकम से चेतावनी पूर्ण समय में संसारिक तैयारी में कामिल दिखावे है, वही रकम से धार्मिक लापरवाही और आत्मिक संतुष्टि के बीमारियां अपन सबसे हानिकारक असर छोड़ते हैं कठिन मुसीबतों के समय। उदाहरण के तैयार से 10 कुंवारियों की कहानी कि हम सीखते हैं कि कुछ ताड़ने से पकड़ने से के समय असफलता हो सकते हैं। याद करो कैसे वो 5 मूर्ख कुंवारियां उस परीक्षा के लिए तैयार करने में असफल थी जो धरने के आने के दिन पे उन्हें मिला था। वो जो मूर्ख थी ने अपने बत्तियां ली और अपने साथ और कुछ तेल नहीं लिए गए। जो उनमें समझदार थी अपन बत्ती के संगे तेल भी ले रहे और अचानक आधा रात में कोई चिल्लाई बोली देखो धुला आ गए और आओ और मिलो। तब उस सब कुमार याद उठे और अपन बत्ती तैयार करी और मूर्ख लड़की जो समझदारों से बोली हमें अपन तेल में से कुछ तेल दो कहे कि हमारी बत्ती बुते वाला है। लेकिन उस समझदार लड़की लोग उत्तर दिश नहीं ये हमार और तुम्हार वास्ते पूरा नहीं हुए, जाओ और अपन वास्ते तेल खरीदो। और जब वो लोग तेल खरीदे के वास्ते चला गए तब दूल्हा आयस गये और 3 जोन तैयार रहे शादी में चला गये उसके साथ है और पाला बन गए हुए गये। बाद में वो मूर्ख लड़की को लोग तेल के लौटिस और बुलाइस प्रभु प्रभु हम लोग के लिए पल्ला खोलो। लेकिन वो जवाब दी सब बोलिस हम तुमसे सच बोलता है हम तुम्हें नहीं जानता। ये तो ठीक था कि कम से कम परीक्षाओं में 5 मूर्ख कुमारियों ने अपने आप को परख दिया कि वे शास्त्र के सिर्फ सुनने वाले और करने वाले नहीं। हमारे एक दोस्त है जो कानून से पहले लॉ स्कूल में एक ईमानदार स्टूडेंट है। हम लोग सब कोई आमंत्रित करता है चाल चलन पे ध्यान दो और अपने आप के जान जो चाहे हम विश्वासी हैं और अपने आप के परखेंगे। हम बीता हुआ जिंदगी में बदलाव और रुकावटों के महिमा को लोग से कौन चीज सीखा है। हम लोग के अपन जिंदगी के धार्मिक शारीरिक सामाजिक सजबाती और दिमागी पहलू में कौन चीज सुधार लावे के है। अभी उस समय है तैयारी करें कि और अपने आप के परखे की इच्छा करें कि और वो सब करना है जो कुछ भी प्रभु हमारे परमेश्वर हम लोग के लिए आज्ञा दे हुए है। हम एक बार एक जवान मिशनरी को अंतिम संस्कार में गया रहा जो एक दुर्घटना में मरीज रहा। मिशनरीज के पिताजी उसे विषय में बात कर रहा और बताई कितना तकलीफ हुई जब अचानक से एक दुलारे बच्चे से मरणशीलता में अलग होने पड़ता है। उसने सीधा सच कहा कि उसे खुद नहीं समझ आता है किस कारण या क्यों इस समय ऐसा घटना हुआ, लेकिन हमें हमेशा याद रहा है कि वो अच्छा आदमी बोलिस कि वो जनता रहा कि परमेश्वर सब के सब कारण पता है और कि इस समय उसका बच्चा गुजरा था और कि ये उसके लिए काफी था और सभा के बताई कि वो और उसके परिवार भले दुखी रहा ठीक हो जाए और वो लोग के गवाही लोग ठोस और मजबूत रहा। वो अपन बात ई बोल के खत्म करीस, हम मांगता है कि आप सब जानो कि जहाँ तक यीशु मसीह के सुसमाचार के सवाल है उसके परिवार उसमें पूरी तरह से सहमत है, हम इसमें पूरी तरह से सहमत है। भले एक प्रियजन का गुजरना बहुत दुखदायी और मुश्किल होता है, ये बहादुर परिवार के सदस्य धार्मिक रूप से तैयार थे ये पर के जाने के लिए वो आनंद महत्व से सीख पा सकते हैं इन कष्टों के झेलकर। विश्वासी होना मूर्खता या धार्मिक आनंद नहीं है बल्कि ये है यीशु मसीह में भरोसा रखना और साहस रखना उसमें जो हमारे रक्षक हैं उनके नाम पे और उनके वादों पे। जब हम मसीह में ठोस विश्वास से आगे बढ़ेंगे एक संपूर्ण आशा की किरण के लेकर और परमेश्वर और सब मनुष्य के लिए प्यार लेकर हम लोग के एक आनंद नजरिया और सपना मिला है जो हम लोग के कमती मनुष्य क्षमता और बहुत आगे जावे हैं। हम लोग सकेंगे इकट्ठा हुए और पवित्र जगहों के खड़ा हुए और दगमगाने नहीं जब तक प्रभु का वो दिन न आ जाए। जब हम ब्रिगम यूनिवर्सिटी आयडाहो के प्रधान रहा एल्डर जेफरी आर होलन वहां आइस रहा और दिसंबर 1998 में हम लोग के एक साप्ताहिक डिवोशनल में बात करे के लिए सुजन और हम थोड़ा से स्टूडेंट्स के आमंत्रित करा कि वो लोग आवे और एडा होलन के संदेश देते हुए पहले उसे मिले। जब उस संगे बताए यार समय खत्म हुए रहा हम एल्डर होलन से पूछा अगर आप ये स्टूडेंट्स के एक चीज सिखा सकता वो कौन सी रहे। वो जवाब दी हम लोग एक बहुत भारी खिंचाव देखता है विचारों में और आनंद अंतर के अंतिम दिन संत होने के नाते हमसे मध्य स्थान में लेना और का चुनाव छीन लिया जाएगा, रास्ते के बीच का भाग हटा दिया जाएगा। अगर आप पानी ना रहे हैं नदी के बहाव में तुम कहीं ना पहुंचोगे, तुम वहीं पहुंचोगे जहां बहाव ले जाएगा तुम्हें। नदी के साथ जाना लहरों के पीछा करना बहाव में जाते रहना नहीं चलेगा। चुनाव बनाए जाने चाहिए एक चुनाव नहीं बनाना कि एक चुनाव है अभी चुनाव चुनना सीख जाए। राहुल ने जो कहा विचारों के अंतर की और ज्यादा खिंचाव के बारे में को भविष्यवक्ता सभी किया गया है सामाजिक सोच के मुताबिक और जब से उसने मेरे सवाल का जवाब दिया 20 साल पहले से लेकर आज तक की घटनाओं से ये पहले से बतलाना इस बढ़ती हुई अंतर के बारे में जो प्रभु के तरीकों और दुनिया के तरीकों से बीच था। होलन चेतावनी देश की उस समय के अंत हुए जा रहा है जब आरंभ से एक पैर हम पुनर्स्थापित गिरजाघर में रखते हैं और एक दुनिया के चीजों में प्रभु के ई सेवक जवान लड़कन से प्रोत्साहित करता है रहा रक्षक से चुनने के तैयारी करके और उसके मन चाहे चेलो बनने को वो लोग के मदद करता रहा तैयारी करके और आगे बढ़े के परखे जाने को और उसमें जो से जांच होने और आजमाने जाने वाले अनुभव से अपनी जिंदगी के अपने आप के परखने के काम एक बहुत जरूरी भाग है स्वर्ग के पिता के मानशाली कार्य को योजना का। हम गवाही देता है कि जब हम दोनों रक्षक में विश्वास करते हैं तैयारी करेंगे और बढ़ेंगे हम सब मरिशाता के आत्मिक परीक्षा में एक जैसा ग्रेड पा सकते हैं। शाबाश तुम अच्छा और विश्वास करे लायक सेवक है तुम्हें हम थोड़ा दिया रहा लेकिन अब तुम बड़ा जिम्मेवारी देगा और आओ और अपन प्रभु के खुशी में भाग ले। हम गवाही देता है कि परमेश्वर जो आनंद पिता है वो हमारे पिता है यीशु मसीह उनके इकलौता जन्मा और जीवित बेटा है हमारे रक्षक और मुक्तिदाता। इन सच्चाइयों की गवाही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।
process of proving ourselves is a fundamental part of Heavenly Father's great plan of happiness. I promise that as we both prepare and press forward with faith in the Savior, we all can receive the same grade on the ultimate examination of mortality. Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. I witness that God, the eternal Father, is our Father. Jesus Christ is his only begotten and living Son, our Savior and Redeemer. Of these truths I joyfully testify. In the sacred name of the Lord Jesus Christ, amen.
To even the careful student of the life and
ध्यान देने वाला स्टूडेंट के लिए भी रक्षक के उपदेश रहा कि एकदम हमारा रकम बनो डरावना और देखने में पाने लायक नहीं है शायद आप हमारा रकम है अपन कसूरों और असफलताओं के अच्छा से जानता है तभी आपके मानसिक रूप से अच्छा लगे ऐसा मार्ग पे चलो जिसमें ऊपर नहीं जावे के पढ़े और बहुत कम पढ़ती होती है असली में ये सीख अवस्थाविक बड़ा चढ़ाकर बोलेगा है हम लोग कारण दे लगता जब हम लोग आराम से सबसे आसान रास्ता चुनता है जिससे जरूरी बदलाव आने में काम से कम मेहनत लगे लेकिन तब क्या अगर हम लोग के मरणशील अवस्था में भी कि एकदम उन्हीं के रकम बनना लाक्षणिक नहीं है क्या होगा अगर कुछ हद तक इस जिंदगी में पाने लायक और सच में एक शर्त हो उसके साथ फिर से रहना क्या होगा अगर कि एकदम हमारा रकम बनना रक्षक के ही असली मतलब है तब कैसे रहता हम लोग अपनी इच्छा की कितना मेहनत करें मांगता है जिसके की उसके चमत्कारी शक्ति हम लोग की जिंदगी में आमंत्रित करे सके ताकि हम लोग अपन ही इच्छाओं के बदल पाओ एल्डर नील मैक्सवेल सिखाए जब हम लोग सोचता है कि यीशु के आज्ञा है उसके रकम बदलने के हम लोग समझता है लोग अभी उतना बुरा धार्मिक स्थिति में नहीं है लेकिन कुछ हद तक ये वो है जिसमें हम लोग इतना आधा दिल के और कम घोष में होते हैं उनके लक्ष्य के लिए जो हम लोग के लिए लक्ष्य भी है हम लोग उसके बढ़ाई करता है लेकिन कभी कबर उसकी रकम करता है एक जवान प्रोटेस्टेंट पादरी चार्ल्स एम शेल्डन यही रकम के विचार ई रकम से पेश करीस हम लोग के ईसाई धर्म अपन सहजता और आराम बहुत पसंद करे है कि हम लोग कष्ट होते हुए भी वफादार आज्ञाकारी रहता है सच में सब कोई के एक ही आज्ञा मिली है उसके रकम बने के जो रकम यीशु मसीह पिता के रकम बनी जो रकम से हम लोग प्रगति करता हम लोग और संपूर्ण मुकम्मल होता और पूरी तरह उभरता है जबकि शिक्षक के कोई एक दल के सिद्धांत से नहीं निकलते हैं पर खुद शिक्षक से ही सीधा आता है यही नजरिया पे जिंदगियों को जीना है संपर्क बढ़ाना है और रिश्तों को कायम रखना है सच में कोई और तरीका नहीं है टूटे हुए रिश्तों या एक बातें हुए समझ हुए घाव को भरने का पर ये कि हम सब संपूर्ण रूप से शांति के राजकुमार की रकम बने आओ हम सब सोचें कैसे शुरू करें यीशु मसीह के रकम बनने के उन्हीं के ही गुणों को पाने से सीधा विचार पूर्वक और जानबूझ के क्या गाया कोशिश द्वारा थोड़ा साल पहले हमारी पत्नी और हम जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट फूजी की तरफ से शुरुआत पे खड़ा हो रहा जब हम लोग ऊपर चढ़े लगा हम लोग दूर दिखावेला पहाड़ की छोटी सी देखा छोटे छोटी के देखा और सोचा क्या हम वहां पहुंच पाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े थकान धुकते हुए मसल और ऊंचाई पे होने के रोग महसूस होने लगे सोचने के कारण हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम अपने हर एक कदम पे ध्यान दें हम लोग बोलता रहा शायद हम ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन हम अभी सकता ही एक अगला कदम ले हुए समय बीतने पर ये डरावना काम पूरा करने लायक दिखा एक के बाद एक कदम इस रास्ता जिसमें हम लोग यीशु मसीह की रकम बनेगा के पहला कदम है ऐसा करे के मांगो उन्हीं के रकम बने के आज्ञा की समझना अच्छा है लेकिन उस समझ के साथ जरूरी है अपने आप के बदले की चाहत भी रखो एक एक करके आम आदमी की तरह ना रह के ये चाहत के बढ़ावे के लिए हम लोग के चाहिए जानो उनको है हम लोग के चाहिए उसके चरित्र के बारे में कुछ जानो और हम लोग के चाहिए उसके गुणों के धर्मशास्त्र साथे भक्ति करे ना समय और अन्य सब पवित्र गानों पे खोजो जब हम लोग उसके बारे में ज्यादा जाने लगता हम लोग उसके गुणों के झलकता दूसरों में देखने लगेगा इससे हम लोग के अपन इरादा में प्रस्थान मिली क्योंकि जब हम सब सके जब और सब सके कुछ हद तक हासिल करें उसके गुणों के तब हम लोग भी सकता अगर हम लोग अपने से ईमानदार रहेंगे, मसीह के प्रकाश जो हम लोग के भीतर है, धीरे से बोली कि हम लोग जहाँ है रक्षक के चरित्र के पावे में अभी दूर है। ये रकम से ईमानदारी जरूरी है अगर हम लोग के प्रतिगति करे के है उन्हीं की रकम बने में। सच में ईमानदारी उसके गुणों में से एक है। अब हम में से जोन बहादुर है साहित मांगी एक भरोसेमंद परिवार के सदस्य पति या पत्नी दोस्त या धार्मिक लीडर से पूछे कि हम लोग के यीशु मसीह के कौन गुण जरूरी है और हम लोग साहित तैयार रहे हुए मांगेगा जवाब के लिए। कभी कभी हम अपने आप के उलझे हुए खेल घर के शिक्षा की रकम देता है जोन कभी दिखावे नहीं दिखावे। हम लोग बहुत मोटा या बहुत पतला है इसलिए असलियत से भरोसेमंद दोस्त और परिवार सके हम लोग की मदद करे अपने आप के सही तरीके से देखे के। लेकिन वो लोग भी जितना भी प्यार और मददगार रहे उसके चीजों के एकदम सही से नहीं देखे। उसके कारण ये जरूरी हुए जावे है कि हम लोग प्यार स्वर्ग के पिता से भी पूछे हम लोग के कौन चीज जरूरी है और हम लोग के कहाँ चाहिए कोशिश करो। वो हम लोगों को संपूर्ण रूप से समझता है और हम और प्यार से हमें हमारी कमजोरी दिखाएगा। शायद आप सीखेंगे कि आपके ज्यादा धीरज विनम्रता दयालुता प्यार आशा उत्साह या आगे कर्तव्यता की जरूरत है जो सिर्फ कुछ गुण है। बहुत दिन नहीं है हम में एक आत्मा झंझोरे वाला अनुभव हुआ जब एक प्यारे गिरजा घर के लीडर एक बहुत सीधे सुझाव दिए कि हमें एक खास गुण ज्यादा जरूरी है। वो प्यार से कोई भी रकम के उलझन दूर कर दी। वही रात के हम अपन पत्नी के अपन अनुभव बताया। वो बहुत दया करीस और समर्थ हुई उसके सुझाव से। पवित्र आत्मा हमसे कन्फर्म करीस कि वो लोग के सलाह एक प्यार करे ला स्वर्ग के पिता से है। प्रीच माई गॉस्पल 13 के चैप्टर 6 में देवलगन वाला एक्टिविटी ईमानदारी से पूरा करना शायद मददगार है रही। एक दफे जब हम एक ईमानदारी जांच कर लिया और सोच लिया पहाड़ चढ़ना है मसीह जैसा बनने का, तब आपको पश्चाताप करे के पड़ी। प्रेसिडेंट प्यार से सिखाई जब हम पश्चाताप करे के चुन लेता हम लोग बदले के चुन लेता। हम उधारकर्ता के मौका देता है और हम लोग के और बेहतर रूप से बदले के हम आत्मिक रूप से बढ़े के और कोशिश पावे के चुनता है उनके जरिए मुक्ति की खुशी। जब हम पश्चाताप करें के चुनता है हम लोग और ज्यादा यीशु मसीह की रकम बने के चुनता। यीशु मसीह की रकम बने के लिए जरूरी है रही अपन दिल और दिमाग के बदलाव सही में हम लोग के अपन चरित्र और ई खाली यीशु मसीह के बचावे ला कृपा द्वार मुमकिन है। अब जबकि आप सोच लिया बदले और पश्चाताप करके और प्रार्थना करके मदद मांग लिया है ईमानदारी से ध्यान रखकर और साहित और कोई से सलाह लेता है आपके जरूरी है रही एक गुण चुनो जिससे आप अपन ध्यान टिकाए पाएंगे। आपके इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। गुण लोग सस्ता में और अचानक से नहीं है लेकिन उसके कृपा से थोड़ा थोड़ा आई मेहनत करके। मसीह जैसन गुण एक प्यार करेला स्वर्ग के पिता के ऊपर है हम लोग के और पास के लोगों की आशीष देवे करें। वही रकम से ये सब गुण के हासिल करने के लिए दिल से करेला विनती उनके दिव्य सेवक के लिए। अगर हम लोग ये उपहार लोग के खोजेगा दूसरे लोग के अच्छा से मदद करके करे के लिए हम लोग को कोशिशों में हम लोग की मदद करी। लालच करके परमेश्वर से उपहार मांग से निराशा और मायूसी मिली। मुसीबतों से जरूरी गुण पे गौर करे से जब हम वो गुण सीखे में प्रगति करेंगे आप दूसरे गुण भी सीख लेगा। कोई जो मसीह के संपूर्ण प्रेम पाए पे बहुत गौर करेगा क्या उसके ज्यादा प्यार और विनम्रता नहीं मिली। कोई जो आज्ञाकारी बने पे गौर करे है क्या उसके ज्यादा लगन और आशा नहीं मिली। आप जो आवश्यक कोशिश करें एक गुण पाए और उन वैसन बन जाए जो हवा के सब नाव के ऊपर उठाए दे है। हमारी कोशिश आवश्यक है जब हम कोशिश करता है उन्हीं के रकम बने के कि हम अनुभव के रिकॉर्ड करें और हम कौन सी सीखता है जब हम मसीह के कोई एक गुण पे मान में गौर करता है। हम शिक्षा में से नवा बात सीखे लगता है जब वो गुण के उदाहरण पड़े से देखता है उसकी सीख उसके प्रचार और उसके चेला लोग में हमारे उनकी सके उन्हीं गुण पे के पहचने दूसरे लोगों में भी। हम बेहतर इंसानों के देखा है गिरजाघर में और जो सदस्य नहीं है मैं भी जिनके पास उनके जैसा गुण है वो लोग शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे वही गुण आम लोगों को दिया जाता है उसकी कृपा से। असली प्रगति देखे के लिए आपके चाहिए कोशिश करना जारी रखो। पहाड़ चढ़ने का रकम जैसे पहले तैयार करे पे पढ़ा और ऊपर जाते समय सहन शक्ति और धीरज वही रकम ईद सफर भी असली कोशिश और बलिदान जरूरी है। सच्चा ईसाई धर्म जिसमें हम लोग कोशिश करता है अपन स्वामी की रकम बनने के में हम लोग के बेहतर कोशिश जरूरी पड़ा है। अब एक छोटा चेतावनी से के बाद उसके रकम बनने ला आज्ञा नहीं मांगे आपके कुसुरवार घिरौना या बिना प्यार के महसूस करवाए। हम लोग के पूरा परिशील उभाव प्रगति कोशिश करने असफलता होने और सफलता पाने के बारे में है। भले हमार अपनी पत्नी और हम जितना भी मांगी हम कि हम लोग अपन आंखें बंद करें और अपने आप की छोटी तरह चमत्कारी साधन से ले जाए पर जिंदगी वैसे नहीं है। आप अभी सही कर रहे हैं, आपके प्यार में हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं कि आप अपन मंजिल पहुंच गया है। अभी काम बचा है ये जिंदगी में और अगले में भी। खाली उसके दिव्य मदद की हम लोग की सत्ता प्रगति करे उसकी रकम बनने के। इस समय जब सब कुछ लगे है हल्का और डरावना सा मानो सभी लोगों पे है, ये एक तरीक है और यही दवा है। वो कोशिश करना रक्षक के रकम बनने के, वो मुक्तिदाता सभी मनुष्य का दुनिया के प्रकाश और उसके खोजो जुन बोलिस रहा हम रास्ता है। हम जनता है कि उसके रकम बनने उसके दिव्य मदद और ताकत के जरिए मुमकिन है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए कि अगर ये मुमकिन ना होता तब उसने हमें ये आज्ञा नहीं दिया होता। हम ये जनता है थोड़ा ये कारण क्योंकि हम उनके गुणों के आप में से इतना देव चांद में देता है। हम ये सब बात की गवाही देता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
I know that becoming like him through his divine help and strength is achievable step by step. If not so, he would not have given us this commandment. I know this in part because I see attributes of him in so many of you. Of these things I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
मुझे एक युवक के पुराने नियम की कहानी पसंद है जिसने प्रॉफिट एलिशा की सेवा की। एक सुबह युवक जागकर बाहर गया और पाया शहर को चारों ओर से नष्ट करने के लिए महान सेना के इरादे से गिरा पाया। वो एलिशा के पास भागा, बोलो हमार स्वामी कौन सी करे की है। एलिशा बोलिस, डरो नहीं क्योंकि जितना हम लोग के संगे है वो लोग से ज्यादा है जितना वो लोग के संगे है। एलिशा को पता था कि युवक को आश्वस्त करने से अधिक जरूरत है, उसे दृष्टि की जरूरत थी। और फिर एलिशा प्रार्थना करिस, प्रभु उसके आंखी खोलो कि वो देखे पाए। और प्रभु वो जवान आदमी के आंख खोल दी और वो देखे, और देखी एलिशा के चारों तरफ ला पहाड़ जलते आग के घोड़ों और रथों से भरा है। क्या बार ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकर की तरह खुद को यह देखने के लिए संघर्ष करते हुए पाए, ये देखने के लिए देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे समय जब आप घेरे में महसूस करते हैं, जब मृत्यु डर के परीक्षण आपको अपने घटनाओं पर लाते हैं, परमेश्वर में और उसके समय में प्रतीक्षा करें और विश्वास करें क्योंकि आप उसके दिल पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा सबक भी है। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, आप भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि अपनी आंखें खोलकर उन चीजों को देखें जिन्हें आप सामान्य रूप से नहीं देखेंगे। खुद को उस तरह देखें जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये साफ तो से देखना है कि परमेश्वर कौन है और हम वास्तव में कौन है। दिव्य प्रकृति और अनंत भाग्य के साथ स्वर्गीय माता पिता के बेटे और बेटियां परमेश्वर से एक से इन सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए पूछे साथ से वो भी आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। जितना अधिक आप अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य आत्मा को गहराई से समझाते हैं उतना ही यह आपके जीवन की हर चीज को प्रभावित करेगा। दूसरों को देखकर यह समझाता कि परमेश्वर हमें कैसा देखता है, कि हमें दूसरों की मदद करने का तरीका तैयार करता है जैसे वो करता है। कॉलमनिस्ट डेविड ब्रुक्स ने कहा, हमारे समाज की क्या बड़ी समस्या है लोगों को देखी और जाने पहचाने नहीं है। एक मूल विशेषता है कि हम सभी को बेहतर होना है और वह है एक दूसरे को गहराई से देखने और खुद को गहराई से देखने का गुण। यीशु मसीह लोगों को गहराई से देखते हैं। वो व्यक्तियों उनकी आवश्यकताओं और वे कौन बन सकते हैं देखते हैं। जहां अन्य लोगों के मच्छरों पापियों और सार्वजनिक लोगों को देखा, यीशु ने शिष्यों को देखा। जहां अन्य लोगों के शैतानियों के पास एक आदमी को देखा, यीशु ने बाहरी संकट को देखा और स्वीकार किया और उसे चंगा किया। अपने व्यस्त जीवन में भी हम यीशु के उदाहरण और अनुसरण कर सकते हैं और व्यक्तियों को देख सकते हैं, उनकी आवश्यकता, उनका विश्वास, उनका संघर्ष और वे कौन बन सकते हैं। जैसे कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मैं उन चीजों को देखने के लिए अपनी आंखें खोलूं, मैं अक्सर खुद से सवाल पूछती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ जो मुझे करना बन चाहिए और मैं क्या नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना शुरू कर देना चाहिए। महीने पहले सैक्रमेंट के दौरान मैंने खुद से ये सवाल पूछा और जो प्रभाव आया वह था, जब आप कतार में इंतजार कर रहे हो तो अपने फोन को देखना बंद कर दें। मुझे एक से ज्यादा काम करने का अच्छा समय मिलता है, लेकिन मैंने यह सोचा कि मैं बंद कर दूंगी। अगले सुबह मैंने खुद को दुकान में एक लंबी कतार में प्रतीक्षा करते पाया। मैंने अपना फोन निकाला और फिर मुझे जो प्रभाव हुआ उसे याद किया। मैंने अपना फोन को वापस डाल दिया। मैंने अपने सामने एक बुजुर्ग सज्जन को देखा। बिल्ली के भोजन को कुछ डिब्बे को छोड़कर उनकी गाड़ी खाली थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा, मैं देख सकती हूँ कि आपके पास बिल्ली है। उन्होंने कहा कि एक तूफान आ रहा है और वह बिल्ली के भोजन के बिना पाया नहीं जाना चाहता था। हमने कुछ समय के लिए दौरा किया और फिर वो मेरी ओर मोड़कर कहा, आप जानते नहीं हैं, मैंने यह किसी को नहीं बताया कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और धन्यवाद की। एक शांत प्रार्थना किया कि मैं अपने फोन पर नहीं थी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेक करने का मौका मिला। अपने पूरे दिल से मैंने जेरिको के लिए सड़क पर प्रीस्ट या लीवाइट की तरह नहीं रहना चाहती, जो देखता है और गुजरता है। मेरे लिए परमेश्वर की काम देखना। मैंने हाल ही में रोजलिन नाम का एक जवान महिला से गहराज से देखने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। यह कहानी मेरे दोस्त ने मुझे बताया है और जब तबाह हो गया तब जब 20 साल का उसका पति चला गया था, अपने बच्चों के साथ माता पिता से बीच अलग अलग समय होने के अकेले गिरजाघर में भाग लेने की संभावना कठिन लग रही थी। उसने चर्चा की, एक गिरजाघर में जहाँ परिवार का सबसे अधिक महत्व होता है, अकेला बैठना डरनाक हो सकता है। मैंने मुश्किल से इसे साथ पकड़ रही थी और आंसू कगार पर थे। मैंने अपने विशेष स्थान पर बैठ गई। एक जवान महिला हमारे वार्ड में मुड़कर मुझे देखा। मैंने मुस्कुराने का नाटक किया। वो मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे पर चिंता देख सकी। मैंने चुपचाप निवेदन किया कि वह मुझे बात नहीं करने आए। अगले एक घंटे का दौरान मैंने उसे कभी कभार मेरी तरफ देखते हुए देखा। जैसे ही बैठक संपन्न हुई उसने सीधा मेरे पास आया। हाय रोसलिन, मैं फुसफुसाई। उसने मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया और बोली, बहन स्मिथ, मैं बता सकती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बुरा है। मुझे खेद है, हम तुमसे प्रेम करती हूँ। जैसा ही भविष्यवाणी का गई थी, आंसू आ गए क्योंकि उसने मुझे फिर से गाली लगाई। लेकिन जब मैं चली गई तो मैंने मन में सोचा, शायद मैं यह सब कर सकती हूँ। वो प्यारी 16 वर्ष की जवान महिला जो मेरी उम्र से आधी उम्र थी ने मुझे उस वर्ष के हर रविवार को मुझे गाले में पूछा, आप कैसे हैं? इसे मुझे गिरजाघर में आने के बारे में महसूस करने में फर्क पड़ा। सच तो यह है कि मैंने उन गले लगाने पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। किसी ने मुझे देखा है, किसी को मुझे पता था कि मैं वहाँ हूँ, किसी ने परवाह की। जैसा कि सभी उपहारण के साथ पिता इतनी स्वेच्छा से प्रदान करते हैं, गहरज से देखने के लिए हमें उनसे पूछना चाहे और फिर करना चाहिए। दूसरों से वैसा ही देखने को कहीं जैसा वो करता है। उसने सच्चे बेटे और बेटियां अनंत और दिव्य प्रभावी के साथ फिर प्यार सेवा और उनके कीमत के पुष्टि के संभावी के अनुसार कार्य करें। जैसे ही यह हमारे जीवन का पैटर्न बन जाता है, हम अपने आप को सच्चे अनुवाई पाएंगे यीशु मसीह के, दूसरे हमारे दिलों पर भरोसा कर सकेंगे और इस पैटर्न में हम अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य को खोज भी करेंगे। मेरे दोस्त ने उसी खाली प्याऊ में बैठा थे और एक और अनुभव याद किया। अकेले में सोच रही थी कि क्या उसके घर में सुसमाचार के को जीने के लिए 20 साल की कोशिश सब बेकार थी। उसे आश्वास करने के अधिक जरूरत है। उसे दृष्टि की जरूरत थी। उसने महसूस किया कि एक सवाल उसके दिल में छुप गया है, तुमने उन चीजों को क्यों किया है? क्या आपने उन्हें इनाम, दूसरों की प्रशंसा या वांछित परिणाम के लिए किया है? वो एक पल के लिए संकोच हुआ और दिल खोजा और फिर आत्मविश्वास से जवाब देने में सक्षम थी, मैंने उन्हें किया क्योंकि मैं रक्षक से प्यार करती हूँ और मुझे उनका सुसमाचार पसंद है। प्रभु ने उसकी मदद के लिए उनकी आंखें खोली। दृष्टि के इस सरल लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन ने उसके परिस्थितियों के बावजूद मसीह के में विश्वास के साथ उसे जारी रखने में मदद की। मैं गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं और हमें यह देखने के लिए आंखें दे सकते हैं, भले यहाँ तक कि मुश्किल है, भले हम थक गए हो, भले तब भी जब हम अकेले हों, और भले तब परिणाम उम्मीद के मुताबिक न हो, उनकी कृपा से वो हमें आशीर्वाद देगा और हमारी क्षमता बढ़ेगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मसीह हमें खुद को देखने और दूसरों को देखने में सक्षम करेगा, जैसे कि वो करता है। उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि सबसे जरूरी क्या है। हम अपने जीवन के सामान्य विवरणों के माध्यम से प्रभु के कार्य को देखने शुरू कर सकते हैं। हम गहराज से देखेंगे और फिर उस महान दिन में जब वह प्रकट हो, तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसी रूप में देखेंगे जैसा वो है। हमें यह आशा हो सकती है कि यीशु मसीह के नाम पर मेरी प्रार्थना है, आमीन।
We invite you, wherever you may be, to join the choir in singing, Come, ye children of the Lord. After the singing, we will be pleased to hear from Elders Quentin L. Cook and Ronald A. Rasband of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Righteousness and unity इतिहास के 200 साल पर हम आओ वादा करें धार्मिकता से जिए और पहले से ज्यादा एकता में रहे। धार्मिकता और एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंसान परमेश्वर से अपन पूरे दिल से प्यार करे और ईमानदारी से कोशिश करे है, उसे रकम बने के वहाँ लड़ाई नहीं है, वहाँ ज्यादा एकता है। हमें सच्चा कहानी पसंद है जो उदाहरण है। एक जवान आदमी जो कि गिरजाघर के सदस्य नहीं था, जनरल थॉमस एल केन संतों को सहारा दीस और बचाई जब वो लोग के नाबू से भागे रहा। वे कई साल तक गिरजाघर के वकील रहा। 1872 में जनरल केन उनके उसके गुनी पत्नी एलिजाबेथ केन और उनके दो बेटे अपन घर पेंसिल्वेनिया से सॉल्ट लेक सिटी गए। वो लोग ब्रिगम यंग और उसके साथियों के साथ सेंट जॉर्ज यूटा जावे दक्षिण मार्ग पे जाता रहा। एलिजाबेथ जब यूटा पहले दफा गया गईस उसके नहीं लगता रहा वहाँ के औरत लोग अच्छा है। वे अचंभित हुए जब उसके कुछ बातें जानी, जैसे कि वो जानिस कि यूटा में औरत लोग सकता रहा कोई भी काम करके पैसा कमाए। सफर में उन लोगों फिल्मोन में रहे जो कि थॉमस आर और मटिल्डा रॉबिन्सन किंग के घर रहे। एलिजाबेथ लिखिस कि जब मटिल्डा प्रेसिडेंट यंग और उसके साथी लोग के लिए खाना बनाता रहा, पश्चिम अमेरिकन इंडियंस कमरे में आई। पहले वो लोग के बुलाए नहीं गए रहा, ऐसे लगता रहा कि वो मांगता रहा साथे खावे। बहन किंग उन लोग से भाषा में बात करीस। उन लोग अपन कंबल के अच्छा से बैठ गईस। एलिजाबेथ उसमें से एक किंग के लड़कन से पूछीस तुम्हार माँ और उन आदमी लोग से कौन सी बोलीस। मटिल्डा के लड़कन के जवाब रहा वो बोलीस ये अजनबी लोग पहले आईस है और हम अभी उन लोग पर खली पकाया है, लेकिन तुम लोग के खाना अभी पका नहीं है और हम तुम लोग के बुलाएगा जैसे तैयार हो जाई। एलिजाबेथ पूछिस वो सच्चे के वैसे करी कि खली बच्चा कुचा खाना रसोई के द्वारा के पास दे दी। मटिल्डा के लड़का बोलिस माँ उन लोग के वही चीज दी जोनची अब लोग के दिया है और वो लोग टेबल पे जगह भी दी और वो वैसा ही करीस और उन लोग खैरा से बैठ के खाईस। एलिजाबेथ के कहना रहा कि उसके रहा में इस औरत खातिरदारी में 100 प्रश्चित निकलीस। एकता दुगना हुए जब लोगों के सम्मान और कादर कदर से पेश आया जाए, भले वे लोग देखने में अलग लगते हैं। लीडर्स होने के नाते हम गलती से नहीं मान लेते हैं कि सभी रिश्ते पहले परफेक्ट थे, सब रवैया मसीह जैसा था, ये सब निर्मल ठीक थे। हालांकि हम लोग के धार्मिक सेवा के कि हम लोग सब हमारे स्वर्ग के पिता के लड़कन है और हम लोग उसके पुत्र यीशु मसीह के मानते हैं और हम लोग की उद्धार करता है। धार्मिक सच्चा होना सिर्फ इस पे नहीं निर्भर है कि हमने हर आशीर्वाद मिले जिंदगी में। अभी शायद हम लोग अभी शांति नहीं करा हुई जो लड़कन नहीं हम लोग के पास या और कुछ आशीर्वाद मांगता है, लेकिन प्रभु वादा करीस है कि जो सच्चा इंसान विश्वासी रही सही परमेश्वर के संगे आनंद सुख के स्थिति में रहेगा। एकता भी एक देर फैलान रकम के मतलब सके रखे, लेकिन सबसे जरूरी है कि पहले और दूसरे महान आज्ञा का उदाहरण है परमेश्वर और अपना पड़ोसी से प्यार करना। इससे पता चले एक जायोन इंसान के बारे में जिसके दिल और दिमाग एकता से जुड़ा है। हमारे संदेश में आज पवित्र धर्मशास्त्र से है। 200 साल बीत गए हैं जब से पिता और उसके पुत्र पहले दफा दिखाई रहा और यीशु मसीह के सुसमाचार के पुनस्थापना के शुरू खरीस रहा 1820 में। मोमन धर्मशास्त्र के निफाय के कहानी में यही रकम के 200 साल के समय है जिससे बाद उधारकर्ता पुराना अमेरिका में अपना गिरजाघर में आइस और स्थापित करीस। जोन इतिहास लेख हम पढ़ते हैं चार निफाय में कुछ लोगों की बातें में बतावे जिससे बीच कोई जरन भाव झगड़ा हलचल झूठ हत्या किसी तरह के कमकता नहीं है। एकता के ध्यान में रखते हुए चार निफाय में लिखा है और ऐसा हुआ कि लोगों के दिलों में परमेश्वर का जो प्रेम निवास रख कर रहा था उसके कारण देश में कोई विवाद नहीं था। दुर्भाग्य से चार निफाय उसके बाद ये नैक्ति बताता बतलाया कि बारे में बताता है जो 200 साल के एक 15 शुरू हुआ जब अधर्म और अलगाव से धार्मिकता और एकता का नाश। उस समय जितना दुष्टता होता इतना बुरा नहीं कि अंत में महान प्रॉफिट मोमन अपना बेटा मोरनाई से शोक प्रकट करीस। लेकिन ये मेरे बेटे इस तरह के लोग कैसे इतने घृणित कामों में आनंद लेने लगे। हम आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपना हाथ के हम लोगों के न्यायदंड देवे से रोक सकता है। ई युग में भले हम लोग ई खास समय में जीते हैं, दुनिया की धार्मिकता और एकता के आशीर्वाद नहीं मिला है जो चार निफाय में बताया है। सच में हम लोग बहुत मजबूत बंटवारा के समय में जीता है। हम लोग सब जानता है कि बेहतर कर सकते हैं और कि इन दिनों में वही हमारा चेतावनी है। हम सत्ता पूरा समझ के सुधारे और आशीर्वाद देवे के एक ताकत बने। हम लोग के गिरजाघर इतिहास के 200 साल के जरूरी समय पे आओ हम प्रभु के गिरजाघर के सदस्य होने के नाते वालों को वादा करें धार्मिकता से जिए और पहले से ज्यादा एकता में रहे। प्रधान रसल एम नेल्सन हम लोग से मांगिस है ज्यादा सभ्यता, ज्यादा एकता और एक दूजे से सम्मान से पेश आना। इससे मतलब है कि एक दूसरे और परमेश्वर से प्यार करो और सबके भाइयों और बहनों जैसा स्वीकार करो और सब में एक जायन लोगों जैसा बनो। हम लोग के सब के शामिल करें इस सिद्धांत के संग हम भी सकते हैं एकता के मिसाल बने। जोन समय में हम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट के प्रेजेंसी में सेवा करते बिताए। वहाँ हमारे साथ स्पेनिश, टोंगन, सामुअन, तगालोग और मैंड्रिन भाषा बोलने वाले कांग्रेशन थे। हम लोग के अंग्रेजी बोलने वार्ड में ढेर जाति और संस्कृति के लोग थे। उसमें प्यार, धार्मिकता और एकता था। यीशु मसीह का गिरजा घर अंतिम दिनों के संतों के वार्ड्स और ब्रांचेस की जगह या भाषा से जाना जाता है, जाति या संस्कृति से नहीं। मेंबरशिप रिकॉर्ड्स में जात नहीं लिखा रहे हैं। मोमन धर्मशास्त्र के शुरू में मसीह ने जन्म से लगभग 550 साल पहले हम लोग के उन जरूरी आज्ञा सेवक के रहा स्वर्ग के पिता के लड़कन के रिश्तों के बीच सब कोई के प्रभु के आज्ञा मानने के है और सबके आमंत्रित कर जाए कि प्रभु के अच्छाई में भाग लेवे के। उद्धारकर्ता के प्रचार और संदेश लगातार बोला कि रहा कि जाति और रंग के लोग परमेश्वर के लड़कन है। हम लोग सब भाई और बहन हैं। जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स में पढ़ते हैं, दरवस लिखा कि रहा और उस कामया रखो मांगो सब इंसान के अधिकार और सुरक्षा के लिए सही और पवित्र नियमों के मुताबिक। इसलिए ये सही नहीं है कि कोई आदमी के चाहे कोई दूसरे के नीचे बंद करो. इन रेवलेशन 1833 में मिला रहा जब मिसौरी में संतों पर बहुत दुख तकलीफ आई से रहा. ई बाहु तनाव के समय रहा कई तरीकों से. ढेर मिजोरियंस नेटिव अमेरिकन्स के एक कठोर दुश्मन समझते रहे और मांगता रहा कि लोग अपने जमीन से हटावे. इससे अलावा ढेर मिसौरी में 22 लोग गुलाम रखे और रहे और लोग के नहीं अच्छा लगा जो गुलामी नहीं मांगता था. इसके बावजूद हम लोग धर्मशास्त्र नेटिव अमेरिकन्स के सम्मान करते हैं और हम लोग के इच्छा रहा कि वो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार सीखे. अंत में संतों के जबरदस्ती मिसौरी से निकाला गया और फिर परीक्षम भेजा गया संतों के एकता और यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने से मिलता है. हम उद्धारकर्ता प्रार्थना इंटरसरी प्रार्थना से खुशी पाते है जॉन जॉन के सुसमाचार में लिखा है. उद्धारकर्ता ने मानिस कि पिता उसके भेजिस रहा और कि वो उद्धारकर्ता है और काम खलास कर लीस रहा जिससे लिए उसके भेजा गया था. वो अपन चेला लोग के लिए प्रार्थना करीस और जॉन मसीह में विश्वास करे मांगे है कि वो ये सब एक हुए जैसे आप पिता हम में है और हम आप में है कि उन लोग भी सभी सके हम लोग में एक हो जाए. एकता के लिए मसीह प्रार्थना करिस है. हम लोग के गिरजाघर के संस्कृति यीशु मसीह के सुसमाचार से रोमन के लोग के लिए देवदूत पॉल के चिट्ठी बहुत गहरी समझ का है. रोम में जो पहली गिरजा था उसमें ज्यूस और जेंटाइल्स रहा. ये जरूरी कि ज्यूस लोग के एक जुडेक संस्कृति रहा और अपन मुक्ति जिससे रहा और बढ़ाते और सफल हो जाते हैं. यीशु मसीह के सुसमाचार का संस्कृति न जेंटाइल्स के संस्कृति का है न जुडेक संस्कृति का है. ये किसी के चमड़े के रंग से या कहीं कोई रहता ही नहीं. हम देखते हैं कि उतने ही अलग है जितना पोल के समय के ज्यूस के जेंटाइल्स. तो ही हम एकता बना रह सकते हैं. हम लोग दुनिया भर के अपने पायनियर्स का सम्मान करते हैं के कारण नहीं क्योंकि वो बिना दोष के थे पर इसलिए क्योंकि उन्होंने मुश्किलों का सामना किया बलिदान दिया मसीह जैसा बना की कोशिश की और विश्वास बढ़ाया की कोशिश की. यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के सदस्य के लिए पुकारता है हमें एक जायन बनने के लिए. ये हमारी विनती है कि हम धार्मिक एकता और रहे और पूरे तरह से हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सेवा और भक्ति में करें जिसके गवाही मैं देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन.
Who are of one heart and one mind and dwell in righteousness. It is my prayer that we will be righteous and united and completely focused on serving and worshiping our Savior Jesus Christ, of whom I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
भाई और भाइनों, यीशु मसीह के शिष्य के रूप में मैं इस सम्मेलन में दुनिया के कोने कोने इकट्ठा हुए सभी लोगों के लिए आशा कर रहा था. ये एक सबसे असामान्य वर्ष रहा है मेरे लिए. ये साउथ अफ्रीका डेबन में एक पवित्र मंदिर को प्रभु को समर्पित करने के लिए फेस प्रेजेंसी के एक असाइनमेंट के साथ शुरू हुआ. मैं हमेशा उन लोगों को याद रखूंगा जो उस पवित्र इमारत में प्रवेश करने के लिए इतने अच्छी तरह तैयार थे. वे रेस्टोरेशन के हिस्सा बने कि लिए तैयार हो गए, प्रभु के एक घर का समर्पण। वे उनके और उनके अटोनमेंट के लिए प्यार से भरे दिलों के साथ आए। वे हमारे स्वर्ग के पिता को धन्यवाद देते थे जो उन्होंने एक्सोल्टेशन तक ले जाएगा। वे योग हुए मंदिरों चाहे जहां भी है दुनिया के तरीकों से ऊपर उठते हैं। दुनिया के हर अंतिम दिनों के संत मंदिर उनमें से नहीं, सभी 168 आनंद जीवन में हमारे विश्वास और हमारे परिवारों और हमारे स्वर्ग पिता के साथ इस बिताने के खुशी के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं। मंदिर में उपस्थित होने से गॉडहेड और एवरलास्टिंग गॉस्पल की हमारी समझ को बढ़ाएगा। प्रभु उदाहरण के पालन करने की हमारी इच्छा बढ़ाएगा। हर एक मंदिर के बाहर ये शब्द है, प्रभु की पवित्रता। मंदिर प्रभु का घर है। उनकी आत्मा पूरी तरह से उन लोगों को बढ़ाती है जो उन पवित्र दीवारों के भीतर पूजा करते हैं। वे आदर्श तय करते हैं जिसके द्वारा हम उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे ससुर ब्लेन ट्विचल, जो महान पुरुष था जिन्होंने मुझे एक महान सबक सिखाया है, बहन रजबन और मैं उसको देखने गए उनके अंतिम दिनों में। जैसे ही हम उनके कमरे में दाखिल हुए उसका बिशप बस निकल रहा था। मैंने सोचा क्या अच्छा बिशप है, वो यहाँ अपने वोट के एक वफादार सदस्य के लिए अपने देखरेख कर रहा है। मैंने बहन से कहा क्या बात है बिशप, तुमसे आकर मिला। ब्लेन ने मुझे देखा और जवाब दिया, कुछ और बात भी थी। मैंने बिशप को आने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा टेम्पल रिकमेंड इंटरव्यू करे। मैं प्रभु के पास रिकमेंड के साथ जाना चाहता हूँ और ऐसा ही हुआ। वो शब्दों प्रभु के सिफारिश के मेरे पास रहा गया। इतना महत्वपूर्ण एक मंदिर के सिफारिश है कि 1891 के शुरुआत तक गिरजाघर के प्रेसिडेंट द्वारा मंदिर के सिफारिश का समर्थन किया गया था। छोटे या बड़े के लिए आपके मंदिर की सिफारिश की इंटरव्यू ये नहीं है कि क्या कार्य करे। एक सिफारिश एक चेकलिस्ट, एक हॉल पास या एक टिकट नहीं है। इसका बहुत पवित्र उद्देश्य है। एक मंदिर के सिफारिश के लिए आपको यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के शिक्षाओं पालन करना पड़ेगा। आपके इंटरव्यू में आपको यीशु मसीह और उनके प्रायश्चित में विश्वास करना है, उन लोगों को सस्टेन करना है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है। सुसमाचार के सिद्धांत में आपका विश्वास, आपके परिवार, जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी के, आपके गुण, निष्ठा, आज्ञाकारी, ज्ञान का शब्द का पालन, ताइदिंग का नियम और सेबत के दिन की पवित्रता, वे यीशु मसीह और उनके कार्य के लिए जरूरी है। आपके टेम्पल रिकमेंड एक गहरी इरादा प्रकट करते हैं कि आप प्रभु के नियमों पालन करते हैं और प्यार करें जैसे वे प्यार करते हैं। विनम्रता, दया, करुणा, क्षमा करना और आज्ञाकारी, और जब आप अपना नाम उस पर पवित्र रिकमेंड पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप उन आदेश के लिए खुद को वचन करते हैं। आपके टेम्पल रिकमेंड आपके लिए और दूसरों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है जिसमें बपतिस्मा, एंडाउमेंट्स, विवाह और सीलिंग्स के द्वारा प्रभु के सिफारिश के किए जाने या याद दिलाना है कि वचन रखने वाले अंतिम दिनों संत के कई अपेक्षा की जाती है। मेरे ससुर ब्लेन ने इसे उस दिन को दिखा जब वे विनम्रता से प्रभु के सामने खड़ा होगा। सोचिए कि जब मोसेस ने माउंट हेरोप पर चढ़ाई की और प्रभु यहोवा उस जलती हुई झाड़ी में दिखलाया। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पैरों से अपने जूते उतार दो, उस जगह के लिए जहां आप खड़े हैं सबसे पवित्र जमीन है। मंदिर के द्वार पर हमें जूते उतारना सांसारिक इच्छाओं या सुखों से दूर जाने देता है, जो हमें धार्मिक राह से दूर करता है, अलग करता है हमें उन चीजों को जो हमें गलत राह पर भटका देता है। दिव्य शक्ति से हमारा शरीर परमेश्वर की एक रचना है, जो आपकी आत्मा के लिए एक मंदिर है और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। यह सच है कि प्राइमरी गीत के शब्द है, मेरे शरीर एक मंदिर है जिसके सबसे बड़ी देखभाल किया की आवश्यकता है। जब प्रभु ने नेफाइटियों के पास आया तो उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार की पुरुष होना चाहिए? प्रभु ने पूछा और फिर उत्तर दिया, जैसे मैं हूँ। प्रभु को सिफारिश किए होने के लिए हम उनके जैसा बनना चाहिए। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट हॉवर्ड डब्ल्यू हंटा ने कहा था, ये मेरा दिल की सबसे गहरी इच्छा है कि गिरजाघर के हर सदस्य को मंदिर में प्रवेश करने की योग बनना चाहिए। प्रभु खुश होगा अगर सब सदस्य पवित्र हो। मैं ये भी बोलूंगा कि लिमिटेड यूज रिकमेंड हमारे युवा के लिए एक स्पष्ट रास्ता तय करेगा। प्रेसिडेंट नेल्सन ने प्रेसिडेंट हंटा के शब्दों को याद करते हुए कहा, उस दिन 6 जून 1994 मंदिर रिकमेंड के हम ले जाते हुए अपने बटुए में एक अलग वस्तु बन गए। ये मुझे प्रभु के पवित्र घर में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करता है। ये परमेश्वर का एक प्रॉफिट के आवश्यक का मेरा बिल्ला बन गया। ये आपको अभी तक एक सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है, या यदि आपके सिफारिश एक्सपायर हो गया है तो बिशप के द्वार पर लाइन लगाए, क्योंकि शुरुआत के संत 1845 और 1846 में नावू टेंपल के दरवाजे पर खड़े थे। मेरे पूर्वजे उन वफादार लोगों में से थे। वे अपने खूबसूरत शहर को छोड़कर पश्चिम की ओर जा रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि मंदिर में उसकी प्रतीक्षा करने के लिए पवित्र अनुभव थे। लोवा से सारा रिच ने लिखा, अगर ये उस मंदिर में हमें विश्वास और ज्ञान के लिए नहीं दिया गया होता तो हमारी यात्रा ऐसी होती जैसे अंधेरे में छलांग लगाना। प्रभु को सिफारिश के बनाने के लिए आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। उसकी आत्मा अपने साथ बहुत में होगी। आपके युवा नेता एल्डर्स कोरम प्रधान, रिलीफ सोसाइटी प्रधान और मिनिस्ट्रिंग भाई और बहन आपको तैयार करेगा, मैं मदद करेगा और आपके बिशप भी। मैं ऐसा समय का अनुभव कर रहा हूं कि जब मंदिरों को बंद कर दिया गया है या उपयोग कम है। प्रभु नेल्सन और हम में से जो उनके पक्ष में सेवा करते हैं के लिए मंदिरों को बंद करने का निर्णय दर्दनाक और चिंता के साथ था। प्रेसिडेंट नेल्सन ने खुद से पूछा, मैं प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ से क्या कहूंगा? ब्रिंगम यंग, विल्फर्ड वुडरोफ और अन्य प्रधान की से क्या कहूंगा? प्रेसिडेंट मोनसन तक। मंदिरों को फिर से खोल, अब हम धीरे धीरे मंदिरों को फिर से खोल रहे हैं काम करने में। मंदिर में जाने के लिए फिर भी योग्य होना चाहिए। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि आपके पास मंदिर है कि नहीं, आपको फिर भी रेकमेंड के योग होना चाहिए। पिछले साल के अंत में बहन रजवन और मैं न्यूजीलैंड में भाषण दिया मंदिर में जाने उनके लिए आसान नहीं था। हैमिल्टन में रेनोवेशन किया जा रहा था और ऑकलैंड में मंदिर के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग की इंतजार कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं उन्हें मंदिर के सिफारिश को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए पहले भले कि वे उन्हें मंदिर में पेश नहीं कर पाए, लेकिन वे खुद को प्रभु के सामने पेश करेंगे और उनके सेवा करने के लिए तैयार होंगे। टेम्पल रेकमेंड के योग्य होने के नाते उन्हें सुरक्षा है और एक वादा है कि आत्मा आपके साथ रहेगी, पवित्र आत्मा। जब हम अपने पूर्वजों के खोज करते हैं और ऑर्डिनेंस के लिए उनके नाम जमा करते हैं तो हम मंदिर का काम करते हैं। जबकि हमारे मंदिर बंद हैं, हम अपने भी अपने परिवारों प्रभु को सिफारिश के करते हैं। जब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेम्पल डिपार्टमेंट के रूप में सेवा करता था तो मैं अक्सर प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकली को ये स्क्रिप्चर कहते हुए सुना जो नाबू के समय था, मेरे मंदिर का काम और मेरे द्वारा नियुक्त की गई सभी कार्य जारी रहे और नहीं रुकना चाहिए और अपने परिश्रम और धैर्य से और तुम्हारे काम दुगना होना चाहिए। मंदिर में हमारा काम हमारे अंत में से इनाम से बंधा है। हाल ही में हमको परीक्षा के लिए रखा गया है। प्रभु ने हमें मंदिरों में परिश्रम और धैर्य के साथ काम करने के लिए बुलाया है। प्रभु को सिफारिश के होने के लिए हम उनके जैसा बनना प्रयास करना चाहिए। हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बारे में प्रभु जो सिखा रहे हैं हमें एहसानमंद रहना और धैर्य रखना कि जब मंदिरों फिर से खुले, जब प्रभु हमारे कोशिशों को और बढ़ती को देखते हैं करने के लिए कहते हैं, वे हमको बता रहे हैं कि हम बढ़ेंगे। उद्धार के लिए हम अपने शास्त्रों को पढ़े, अपने परिवार के इतिहास को जाने। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के एक अपोजल के रूप में वादा करता हूं कि जैसे कि आप अपने कोशिशों करें, आप परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति में नए सिरे से महसूस करेंगे और पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे जो आपके निर्देश देगा और आपको ये शांति महसूस करेगा कि आप प्रभु को
सिफारिश। The choir will now favor us with Have I Done Any Good? Our concluding speaker for this session will be President Dallin H. Oaks, first counselor in the First Presidency. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing Love One Another. The benediction will then be offered by Elder Juan A. Uceda of the 70.
Cheer up, my son, may someone feel good. The Lord's teachings are for eternity and for all of God's children. In this message, I will give some examples from the United States, but the principles I teach are applicable everywhere. We live in a time of anger and hatred in political relationships and policies. We felt it this summer, where some went beyond peaceful protests and engaged in destructive behavior. We feel it in some current campaigns for public offices. Unfortunately, some of this has even spilled over into political statements and unkind references in our church meetings. In a democratic government, we will always have differences over proposed candidates and policies. However, as followers of Christ, we must forego the anger and hatred with which political choices are debated or denounced in many settings. Here's one of our Savior's teachings, probably well known but rarely practiced. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. For generations, Jews had been taught to hate their enemies, and they were then suffering under the domination and cruelties of Roman occupation. Yet Jesus taught them, love your enemies and do good to them that despitefully use you. What revolutionary teachings for personal and political relationships! But that is still what our Savior commands. In the Book of Mormon, we read, For verily, verily, I say unto you, he that hath the spirit of contention is not of me, but is of the devil, who is the father of contention. And he stirreth up the hearts of men to contend with anger, one with another. Loving our enemies and our adversaries is not easy. Most of us have not reached that stage of love and forgiveness, President Hinckley observed, adding, it requires a self-discipline almost greater than we are capable of. But it must be essential, for it is part of the Savior's two great commandments, to love the Lord thy God and to love thy neighbor as thyself. And it must be possible, for he also taught, ask and it shall be given you, seek and ye shall find. How do we keep these divine commandments in a world where we are also subject to the laws of man? Fortunately, we have the Savior's own example of how to balance his eternal laws with the practicalities of man-made laws. When adversaries sought to trap him with a question about whether Jews should pay taxes to Rome, he pointed to the image of Caesar on their coins and declared, "Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's, and unto God the things which be God's." So, we are to follow the laws of men, render unto Caesar, to live peacefully under civil authority, and we follow the laws of God toward our eternal destination. But how do we do this? Especially, how do we learn to love our adversaries and our enemies? The Savior's teaching not to contend with anger is a good first step. The devil is the father of contention, and it is he who tempts men to contend with anger. He promotes enmity and hateful relationships among individuals and within groups. President Thomas F. Monson taught that anger is Satan's tool, for to be angry is to yield to the influence of Satan. No one can make us angry. It is our choice. End of quote. Anger is the way to division and enmity. We move toward loving our adversaries when we avoid anger and hostility toward those with whom we disagree. It also helps if we are even willing to learn from them. Among other ways to develop the power to love others is the simple method described in a long-ago musical. When we are trying to understand and relate to people of a different culture, we should try getting to know them. In countless circumstances, strangers, suspicion, or even hostility give way to friendship or even love when personal contacts produce understanding and mutual respect. An even greater help in learning to love our adversaries and our enemies is to seek to understand the power of love. Here are three of many prophetic teachings about this. The prophet Joseph Smith taught that it is a time-honored adage that love begets love. Let us pour forth love, show forth our kindness unto all mankind. End of quote. President Howard W. Hunter taught, quote, "The world in which we live would benefit greatly if men and women everywhere would exercise the pure love of Christ, which is kind, meek, and lowly. It is without envy or pride. It seeks nothing in return. It has no place for bigotry, hatred, or violence. It encourages diverse people to live together in Christian love, regardless of religious belief, race, nationality, financial standing, education, or culture." End of quote. And President Russell M. Nelson has urged us to, quote, "expand our circle of love to embrace the whole human family," end of quote. An essential part of loving our enemies is to render unto Caesar by keeping the laws of our various countries. Though Jesus' teachings were revolutionary, he did not teach revolution or lawbreaking. He taught a better way. Modern revelation teaches the same, quote, "Let no man break the laws of the land, for he that keepeth the laws of God hath no need to break the laws of the land. Wherefore, be subject to the powers that be." end of quote. And our article of faith, written by the prophet Joseph Smith, after the early saints had suffered severe persecution from Missouri officials, declares, quote, "We believe in being subject to kings, presidents, rulers, and magistrates in obeying, honoring, and sustaining the law," end of quote. This does not mean that we agree with all that is done with the force of law. It means that we obey the current law and use peaceful means to change it. It also means that we peacefully accept the results of elections. We will not participate in the violence threatened by those disappointed with the outcome. In a democratic society, we always have the opportunity and the duty to persist peacefully until the next election. The Savior's teaching to love our enemies is based on the reality that all mortals are beloved children of God. That eternal principle and some basic principles of law were tested in the recent protests in many American cities. At one extreme, some seem to have forgotten that the First Amendment to the United States Constitution guarantees the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for the redress of grievances. That is the authorized way to raise public awareness and to focus on injustices in the content or administration of the laws. And there have been injustices in public actions and in our personal attitudes. We have had racism and related grievances. In a persuasive personal essay, the Reverend Teresa A. Deer of the National Association for the Advancement of Colored People has reminded us that, quote, "Racism thrives on hatred, oppression, passivity, indifference, and silence," end of quote. As citizens and as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we must do better to help root out racism. At the other extreme, a minority of participants and supporters of these protests and the illegal acts that followed them seem to have forgotten that the protests protected by the Constitution are peaceful protests. Protesters have no right to destroy, deface, or steal property, or to undermine the government's legitimate police powers. The Constitution and laws contain no invitation to revolution or anarchy. All of us, police, protesters, supporters, and spectators, should understand the limits of our rights and the importance of our duties to stay within the boundaries of existing law. Abraham Lincoln was right when he said, "There is no grievance that is a fit object of redress by mob law." Redress of grievances by mobs is redress by illegal means. That is anarchy, a condition that has no effective governance and no formal police, which undermines rather than protects individual rights. One reason the recent protests in the United States were shocking to so many was that the hostilities and illegalities felt among different ethnicities in other nations should not be felt in the United States. This country should be better in eliminating racism, not only against black Americans, who were most visible in the recent protests, but also against Latinos, Asians, and other groups. This nation's history of racism is not a happy one, and we must do better. The United States was founded by immigrants of different nationalities and different ethnicities. Its unifying purpose was not to establish a particular religion or to perpetuate any of the diverse cultures or tribal loyalties of the old countries. Our founding generation sought to be unified by a new constitution and laws. That is not to say that our unifying documents or the then current understanding of their meanings were perfect. The history of the first two centuries of the United States showed the need for many refinements, such as voting rights for women and, particularly, the abolition of slavery, including laws to assure that those who had been enslaved would have all the conditions of freedom. Two Yale University scholars recently reminded us, quote, "For all its flaws, the United States is uniquely equipped to unite a diverse and divided society. Its citizens don't have to choose between a national identity and multiculturalism. Americans can have both. But the key is constitutional patriotism. We have to remain united by and through the Constitution, regardless of our ideological disagreements," end of quote. Many years ago, a British foreign secretary gave this great counsel in a debate in the House of Commons. Quote, "We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and these interests it is our duty to follow," end of quote. That is a good secular reason for following eternal and perpetual interests in political matters. In addition, the doctrine of the Lord's Church teaches us another eternal interest to guide us, the teachings of our Savior, who inspired the Constitution of the United States and the basic laws of many of our countries. Loyalty to established law instead of temporary allies is the best way to love our adversaries and our enemies as we seek unity in diversity. Knowing that we are all children of God gives us a divine vision of the worth of all others and the will and ability to rise above prejudice and racism. As I have lived for many years in different places in this nation, the Lord has taught me that it is possible to obey and seek to improve our nation's laws and also to love our adversaries and our enemies. While not easy, it is possible with the help of our Lord Jesus Christ. He gave this command to love, and he promises his help as we seek to obey it. I testify that we are loved and will be helped by our Heavenly Father and His Son, Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. Our dear and kind Heavenly Father, we bow our heads before Thee at the conclusion of this wonderful session of General Conference. We are here to express the gratitude for Thy love and mercy, for Thy Son, for His life, His teachings, His wonderful love for us, His atoning sacrifice, and His resurrection. We especially pray today for the youth and the children, so that they may be able to see and feel within them the beautiful, the sweet truths of the restored gospel. We pray, Father, once again for all those who are sick and afflicted in any manner. Thy beloved Son declared to the Nephites of old that He is the light and the life of the world. And so we pray that in our homes and communities we may be able to receive and have that light that comes from Him. We pray for our missionaries and members all over the world, Father. And also pray that we may be shepherds to all those who are in need. And pray so very humbly in the name of Thy beloved Son, even Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.